शांति। आज के सत्र में हम आदरणीय सूरज भाई जी का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत है। तपस्या की इस भूमि में आज हमारे सामने बाबा के एक ऐसे विरल महावीर रत्न मौजूद है जिन्होंने योग और तपस्या को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाया है। योग के विभिन्न प्रयोग और वो प्रयोग के आधार पर सफलता आपके जीवन के सिद्धि स्वरूप स्थिति का आधार रही है। आज भी आप हमें आत्म शुद्धि के लिए एकमात्र उपाय गहन तपस्या। ये गहन तपस्या क्या हो सकती है, किस रूप में हम कर सकते हैं, आज इस विषय को स्पष्ट करेंगे आदरणीय सूरज भाई जी। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि तपस्या आज के माहौल में जितनी जरूरी है और जिस रूप से जरूरी है वैसी गहनता तपस्या में कैसे लाई जाए, आपके पास इसके ढेर सारे अनुभव हैं। बहुत सारे प्रश्नों के जवाब बड़े सहज रूप से आपके समाधान से मिलते आए हैं। आज इस विषय पर भी एक सहज रूप से हम सबको समाधान मिल जाए, यही आपसे अनुरोध है आदरणीय सूरज भाई।
ओम शांति। पहले तो ये जानना है, सोच के हाथ उठाना, सब हाथ उठाएं ऐसी जरूरी नहीं है। आप में से कौन कौन तपस्या करना चाहते हैं? अच्छा, सच्चे दिल से चाहते हैं या यहां आके चाहते हैं? क्यों? तपस्या शब्द ही याद दिलाता है कि इसके पीछे त्याग छुपा हुआ है। त्याग के बिना तपस्या नहीं होगी। बाबा के पास कितने ही बच्चे आए और कितने ही चले गए तपस्या के अभाव में। अगर 12 लाख अब हैं तो 12 लाख ही गए हुए भी हैं। 1 साल चल के, 2 साल, 6 मास चल के तो बहुत गए हैं, शायद 25 लाख गए हों। तपस्या परम आवश्यक है, न केवल ये समय की आवश्यकता है, पर इससे ही तो हम वो कुछ पाएंगे जो हमें पाना है। बाबा हमें सब कुछ देने आया है। एक महावाक्य बाबा का याद करो, अभी भी आया 2-4 दिन पहले, बहुत आता है। चित्र बनाओ, बाबा सामने खड़ा है और कह रहा है, बच्चे मुझसे जो चाहे ले लो। राजी हुआ है भगवान, पर ले लो उसकी विधियां हैं, क्योंकि जो कुछ मिलेगा वो ऐसा नहीं है कि 10-20 साल के लिए हो, पूरे कल्प के लिए मिलना है, इसलिए उसके पहले साधनाओं की जरूरत है। मैं आपको कुछ साधनाएं बता देता हूं, डरना नहीं उससे, और थोड़ी भी आत्माएं यदि साधनाओं में लग जाएं, एक योगी भी एक शहर के लिए काफी है, श्रेष्ठ योगी। और पवित्र आत्माएं वो तो लाइट हाउस हैं। पहली तपस्या, अब जिसको महान तपस्वी बनना है वो स्वयं चिंतन कर लेना। अब ये जो कुछ मैं कहूंगा वो सब बाबा के द्वारा कही हुई बातें हैं। सबसे सुंदर तपस्या है बुद्धि को स्थिर करने की, और सबसे कठिन भी। यह सहज है? सहज नहीं है, लाखों में कोई एक कर पाता है, योगियों में भी, सन्यासियों में भी नहीं कर पाए लोग, इसलिए बेचारे ने छोड़ ही दिया कि भक्ति पूजा पाठ ही ठीक है। सबसे बड़ा सब्जेक्ट मन बुद्धि को एकाग्र करना, क्योंकि मनुष्य ने इन दोनों को बहुत भटकाया है। अब मन को भी एकाग्र करना है और बुद्धि को भी, और बुद्धि की एकाग्रता के साथ जो दूसरी सुंदर साधना है, बुद्धि को स्वच्छ करना। बहुतों की बुद्धि डस्टबिन बन गई है, समझते हैं माताएं डस्टबिन क्या होती है? गांव की माताएं नहीं जानती होंगी इतनी अंग्रेजी, कूड़ादान। हाँ, शुद्ध हिंदी बोल दिया आपने, कूड़े के लिए भी शुद्ध हिंदी, कूड़ादान। क्या क्या भर लिया है सबने बुद्धि में, वो हर एक खुद जाने। और जो माल हमारी आत्मा की मूल नेचर के विरुद्ध है वो तंग कर रहा है। जैसे किसी ने घर में ही सांप पाल लिया हो और अब वो इतना खतरनाक हो गया हो कि बाहर भी ना जाता हो, मार भी ना सकते हो, तो क्या हाल होगा। कईयों ने सांप पाल लिए हैं बुद्धि में, वो उनको परेशान कर रहे हैं, और बहुतों को तो ये भी नहीं पता कि वो हैं क्या। माताएं फोन करती हैं, बहुत हरियाणा से बहुत आ जाते हैं मुझे कभी कभी, जब मैं खोलता हूं, सारा समय तो मैं खोलता नहीं। कई माताएं फोन करते ही पहली लाइन बोलती हैं, भाई जी मैं बहुत परेशान हूं। माताओं की परेशानियों का कारण तो मैं जानता ही हूं, फिर भी उनसे पूछ लेता हूं कि भाई क्या हो गया। बच्चा कहना नहीं मानता, तुम्हें क्या इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है, तुम कुछ और करो ना जो वो कहना माने। लेकिन छोटी बातें आत्मा को भारी कर रही हैं। जोड़ लें इसमें, ये मैंने क्यों सुनाया आपको, बहुतों का मन 99% आत्माओं का मन निर्बल हो गया है, कमजोर, नाजुक। इसको कहते हैं अंग्रेजी में सेंसिटिव माइंड, नाजुक मन। एक कहानी से आप समझ जाएंगे सच्ची। गुजरात में हम गए अभी नजदीक में, एक MLA ज्ञान में है, वो अपने मैसेज को लाए कि इनको बहुत मानसिक तकलीफ है, बताओ। तो मैंने दो चार बातें पूछी क्या है, फिर उसने खुद बताया MLA ने कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई, व्यक्ति तो बुजुर्ग था, उसकी पत्नी इसके पास आ गई, इसको छत पे ले गई, अपनी सारी दुख की कहानी इसे सुना दी, वो तो खुश होके चली गई, और इसको रात को पैरालाइज हो गया, लकवा हो गया। आगे की तो कहानी अलग है, डॉक्टरों से कुछ नहीं हुआ, कहा कि मैंने कहा डॉक्टर तुमसे नहीं होगा, मैं ही इसे ठीक करता हूं। फिर मैंने उसको अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें सुना के खुशी और नशे में लाया, फटाफट ठीक होने लगी। इसको कहते हैं सेंसिटिव माइंड, नाजुक, दूसरे की हर बात ले ली, दूर करने की बजाय ले ली। दूर करने के लिए लेना नहीं होता, शक्तिशाली बनना होता है। कईयों का मन ऐसा हो गया है, तो मन को शक्तिशाली बनाना भी हमारी साधना है और बुद्धि को स्वच्छ करके स्थिर करना भी। समझ रहे हैं पीछे की माताएं? मन बुद्धि को स्थिर करना है, बहुत भटका दिया है आपने। कितना भटकाया वो आप देखो, पर संसार में लोगों ने मन को बहुत भटका दिया है, इच्छाओं के पीछे, कामनाओं के पीछे, तृष्णाओं के पीछे। दूसरों से बहुत कुछ चाहते हैं। मैं तो एक बात कहता हूं कि हम उनसे चाहते हैं जिनके मटके पहले ही खाली हैं, सूखे हुए हैं। पिलाएंगे पानी? वही तलाश रहे हैं, कोई पानी दे दे हमें। संसार में आत्माएं खाली हो गई है। आप सबको ध्यान रखना है, ज्ञान के गहन चिंतन में रहना है जीवन में। आपके घर में एक बच्चे ने जन्म लिया है, बच्चा है आपका, बहुत प्यार होगा ही उससे, घर में आया खुशियां मनाई जाएंगी। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो आत्मा न जाने अपना कैसा कर्मों का हिसाब भी साथ लेकर आई है। शरीर ही तो बच्चा है, आत्मा बूढ़ी हो गई है, न जाने क्या क्या साथ लाई है, हिसाब लेने आई है या देने आई है। एक व्यक्ति आ रहा मेरे पास कल से, ज्ञान सरोवर में प्रोग्राम में आया, सारी अपनी कहानी सुनाए, डिप्रेशन में हूँ। सुनाने ये आया कि मैं बहुत लोगों से खपा हूं, उनको माफ नहीं कर पाता, क्या करूं। मैंने कहा किस किस से खपा हो? पहले ही बताया, बचपन से ही, माँ बाप से, फिर टीचर से, फिर पत्नी से, फिर बच्चों से। मैंने कहा बचा कौन है? कि नहीं, हजारों हैं। फिर आगे मैं तो भोजन कर रहा था, ज्यादा ख्याल भी नहीं कर रहा था क्या कह रहा है ये व्यक्ति। कहने लगा मुझे बहुत डिप्रेशन हो गया है, नींद नहीं आती है, पत्नी को देखता हूँ एकदम गर्म होता हूँ। उसकी सारी बात सुन के मैंने उसे कहा, तुम्हें किसी को क्षमा नहीं करना है, ध्यान से सुन लेंगे सभी, तुम्हें तो क्षमा मांगनी है। तुमने हजारों ने तुम्हें नहीं सताया, तुमने हजारों को सताया हुआ है। अब वो सब बदला लेने आ गए ना, टीचर बन के आ गया, डांट रहा है। अब टीचर तो डांटेगा, तुम पढ़ते नहीं तो टीचर बिना मतलब थोड़ा ही डांटेगा। दोस्त बेचारे टीचर का, बाप ने गुस्सा किया है बचपन से, मगर तुम मानते नहीं होगे ना, इसलिए तो किया। तो उसको कन्विंस किया कि तुम क्षमा मांगो, हजारों आत्माओं को कष्ट दिया है, देखो क्या हो रहा है। सभी ध्यान से सुन लें और सभी ये काम करेंगे, यही कर लेना मधुबन में कल सवेरे से। जिन आत्माओं को हमने हजार दो हजार साल पहले कष्ट पहुंचाया था, हमें याद तो नहीं है, उनकी बद्दुआओं के वाइब्रेशंस, समझते हैं ना माता है, वाइब्रेशंस, तरंगे, उनकी किरणें अब तक भी हमसे जुड़ी हुई हैं। वो हमारा पीछा ही कर रही हैं, उससे बचा नहीं जा सकता। अगर उनसे क्षमा मांग लें तो कई उसमें से शांत हो जाएंगे, वो रस्सियां कट जाएंगी। बहुतों के डिप्रेशन इससे ठीक हुए हैं। डिप्रेशन पे जब से हमने कार्य करना शुरू किया, डॉक्टरों के फेलियोर केस मेरे पास आते थे, मुझे भी डॉक्टर समझ के। अब मैं पूछता था डिप्रेशन, समझ में आता था कि हजारों साल पहले इस आत्मा ने जो बहुतों को सताया है, सताते हैं ना, आज कितना सता रहे हैं लोग। चलो हजार साल पहले, सौ साल पहले बहुतों को सताया है। अब आतंकवादी हैं, दुनिया भर के बुरे लोग कितना सता रहे हैं, उन्हें ये पता नहीं इसका फल भी मिलेगा। ये तो मनुष्य नहीं जानता ना, आतंकवादी और बुरे लोग ये तो कुछ नहीं जानते, लेकिन जब फल सामने आता है तब दुर्गति होती है। तो सभी रोज सवेरे उठकर उन आत्माओं से क्षमा याचना करेंगे जिन्हें हमने कष दिया है पूर्व जन्मों में। वो आपके बच्चे बनकर भी आ गए होंगे आपके घर में, ये भी संभव है, बिल्कुल आपके समीप आपके पास ही रहते होंगे, क्योंकि जब तक ये रस्सियां नहीं कटेंगी नींद नहीं आएगी सुख भरी। अब ये समस्या बढ़ती जा रही है दुनिया में, नींद ना आना। छोटे बच्चे को एक माता लाई पीछे शांतिवन में, डिप्रेशन है इसको, 6-7 साल का बच्चा था, वो डिप्रेशन में है। डॉक्टरों के पास इसका कोई उत्तर नहीं कि बच्चा डिप्रेशन में क्यों है, उसने तो अभी कुछ किया ही नहीं। तो हम सब जानते हैं, तो एक साधना हुई मन बुद्धि को स्थिर करना। अब दो जगह इनको स्थिर करने का अभ्यास करेंगे, आत्मा पर, परम धाम में बाबा पर। और ये योग की विधि आप सभी सीख लें अच्छी तरह, 25-25 साल वालों ने भी नहीं सीखा है, या सीखा है हंसी की बात सुना दो फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। माता आई 25 साल पुरानी ज्ञान में, अभी अभी नजदीक में समस्या लाई बच्चे की, मैंने कहा ठीक है ये तो छोटी समस्या, 1 घंटा रोज योग करना है आपको। कहा भाई जी मेरा तो योग लगता नहीं। मैंने कहा कितने साल से ज्ञान में है, 25 साल से। मैंने उससे हंसी में पूछा ये बताओ 25 साल में 25 घंटे योग किया है। बेचारे ने सहज भाव से उत्तर दिया नहीं भाई जी, 25 साल में 25 घंटा भी योग नहीं हुआ, कच्चे हो गई आत्माएं योग में। बाबा बाबा कहने से कुछ नहीं होगा, वो तो भक्ति का एक अंश है, तो बाबा ने भी सिखा दिया कि कुछ नहीं करते तो ये तो करो कम से कम। मन बुद्धि को स्थिर करना आत्मा पर, देखेंगे आत्मा का स्वरूप चमकती हुई मणि, उससे किरणें फैल रही हैं, यहाँ न दिखे तो यहाँ देखना अपने सामने, ये आत्मा मैं हूँ। और आत्मा के बारे में चिंतन करेंगे, याद रखेंगे योग अभ्यास में, चिंतन के बिना योग सफल नहीं होगा। बुद्धि से स्वरूप को देखेंगे, बुद्धि है तीसरा नेत्र, नेत्र से देखेंगे आत्मा को, फिर परम धाम में शिव बाबा को देखेंगे, क्लियर देखेंगे, दिखेगा देखना है, अभी मैं पूछूंगा किस किस को दिखा, आंखों से नहीं दिखेगा तीसरे नेत्र से, फिर उसके बारे में चिंतन, फिर आत्मा को बाबा को, आत्मा को बाबा को। आप रोज 10 मिनट ये ड्रिल कर लेना, जीवन में नियम बना दो, कभी भी सवेरे करें तो बहुत अच्छा, 6 बजे करो, 8 करो, 10, 12, 1, 6, 7, कभी भी एकाग्रता बढ़ जाएगी। चलो हम ये अभ्यास करते हैं, सभी मस्तक के मध्य में मन बुद्धि को स्थिर करें आत्मा पर, देखें अपना स्वरूप, मैं चमकती हुई मणि, भ्रकुटी की कुटिया में विराजमान, मैं बहुत प्रकाशवान हूँ, बहुत तेजस्वी हूँ, मेरा प्रकाश दूर दूर तक फैल रहा है, परम धाम में देखें ऊपर आकाश के बहुत दूर महाज्योति, अति तेजस्वी, बाबा का प्रकाश जैसे कि सारे ब्रह्मलोक को जगमगा रहा है। फिर से आत्मा पर, मैं तेजस्वी आत्मा श्याम बहुत श्याम मुझसे चारों ओर शांति की किरणें फैल रही हैं। फिर से परम धाम महाज्योति शांति के सागर आत्मा, मैं आत्मा परम पवित्र मुझसे चारों ओर पवित्रता की गोल्डन किरणें फैल रही हैं। मैं परम पवित्र परम धाम में पवित्रता के सागर, उनकी पवित्र किरणें चारों ओर फैल रही हैं। आत्मा प्रकृति की कुटिया में, ओ शांति। ये एक सुंदर प्रैक्टिस है। फिर से मैं एक बात कहता हूं, मन है संकल्प शक्ति। हमारे मन में निरंतर संकल्प उठते हैं, हमने भरे हैं ना उनको। बस एक बात ध्यान रखना है सभी को, अटेंशन। हम यदि अच्छे संकल्प रचेंगे मन में, तो बाकी संकल्प शांत होने लगेंगे। मनुष्य गलती कर रहा है आज कि वो अच्छे संकल्पों की रचना नहीं करता, तो जो भरा हुआ है अंदर वो निकलने लगता है। अच्छे संकल्प बुरे संकल्पों को वैसे ही नष्ट कर देते हैं जैसे घर में थोड़ी सी बदबू हो जाए और हम अच्छी अगरबत्ती जला दें। हमें बदबू के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, हमें अगरबत्ती जलानी है, उसकी सुगंध उस दुर्गंध को नष्ट कर देगी। श्रेष्ठ संकल्पों के साथ योग, जिसके जितने अच्छे संकल्प उतनी अच्छी स्थिरता होगी, ठीक है। दूसरी साधना इसी से जुड़ी हुई, जो सबको अच्छी तरह करनी चाहिए, चलते फिरते कर्म करते अशरीरी होने की और आत्मिक दृष्टि की, और इससे जुड़ जाती है पवित्रता की साधना। चार दिन से आप मुरली सुन रहे हैं पवित्रता पर। पवित्रता से तुम संसार बदलते हो। पवित्रता और योग के बल से खोया हुआ राज प्राप्त करते हो। ये दो बड़े बल हैं हमारे पास। मैं इनके साथ दो और जोड़ देता हूं। पहला बल ज्ञान का बल। ज्ञान तो हम सभी के पास है, बहुत बड़ा ज्ञान सरल शब्दों में है। मैं आत्मा हूं, तीन अक्षर हुए बस, मैं आत्मा हूं। और सारे दर्शन और उपनिषद लिख दिए ऋषियों ने, फिर भी समझ में नहीं आया मैं क्या हूं। और इससे भी गहरी बात, आत्मा परम धाम से आई है। परम धाम के बारे में तो कुछ भी वर्णन नहीं, गीता में केवल ये शब्द आया है ब्रह्मलोक आया है, कुछ पता नहीं। आपने अपने बच्चों को भी सिखा दिया होगा, कहां से आए हो? परमदान से। बच्चे भी कहते हैं, और शंकराचार्य से पूछो तो आप पे गुस्सा ही करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। कहां से आते हैं? यही तो हैं, कहां से आए हैं? बहुत साल पहले जब हम सन्यासियों से बहुत डिस्कस करते थे, जब गीता के भगवान पर बहुत ज्यादा चर्चाएं होती थी, तो मैं एक बार ऋषिकेश गया, एक बहुत अच्छे महामंडल, बहुत सुलझा हुआ महामंडल इस वक्त था, कैलाश आश्रम है ऋषिकेश में, बहुत प्रसिद्ध पुराना, बहुत अच्छा बुजुर्ग महामंडलेश्वर, समझदार, क्रोधी नहीं। मैंने पूछा, महाराज एक बात बतानी है आपको, आप मुक्ति चाहते हैं? हाँ। मुक्ति में कहाँ जाओगे? आपके काम भी आएगी पॉइंट। कहा, परमात्मा के समीप रहेंगे जाकर, क्या अनुभूति होगी? परमानंद है वहां। ठीक है इतना तो। मैंने पूछा, पर आप तो ये मानते हो भगवान सब जगह, हमारे अंदर भी है बाहर भी है, उसे छोड़ के कहां जाओगे? माताओं ने तो नहीं समझा, अब बेचारा चुप हो गया। मुक्ति का कितना सरल ज्ञान बाबा ने दिया है। आचार्यों के बीच में हजारों साल से डिबेट रही, मुक्ति के बाद आत्मा लौटती है या वहीं रह जाती है सदा, मुक्ति में कोई आनंद है या नहीं है, दो बातों पे डिस्कशन होता है हजार साल से, कोई उत्तर नहीं निकला। बाबा ने बता दिया, मुक्ति में आत्मा ब्रह्मलोक में रहती है, उसका घर है, लीन कहीं नहीं होती, घर से पाठ बजाने आना ही है। कोई बच्चा घर में ही सोया रहे, माँ पसंद करेगी? कहेंगे ना जाओ कुछ काम करो, निठल्ले क्यों बैठे? तो मुक्ति में बैठना माना निठल्ले, कोई काम काज नहीं है, पसंद करेगा कोई? शरीरी होने की साधना, तो ज्ञान का बल, ज्ञान को बल बनाए सभी, वो बनेगा चिंतन से, माना उन चीजों को याद रखें, उनकी प्रैक्टिस करें। कहीं भी समझ में नहीं आता है चिंतन क्या होता है, सीधा सा अर्थ, ज्ञान की दो चार बातें याद रखें, बस चिंतन आप ही होता रहेगा। तो ज्ञान का बल, इसके साथ में एक और चीज जोड़ देता हूं, जो बुद्धिमान यहां बैठे हैं वो इसको ग्रहण करें जल्दी, इस ज्ञान को अपना विवेक बना दो, विजडम। दूसरा बल स्वमान का बल, स्वमान सबसे बड़ी बात सिखाई है बाबा ने, इसका भी कहीं वर्णन नहीं है, स्मृति शब्द आया है शास्त्रों में, लेकिन बाबा ने स्मृतियां दिला दी हैं आकर। देखो ये सहज पुरुषार्थ का तरीका है, जो भी आप में से रोज मुरली सुनने जाएं सेंटर में, यहां प्रैक्टिस कर लेना, एक दो दिन तो बचे हैं ना, मुरली सुने, केवल लिखना है सब कुछ, ये नहीं, इस लक्ष्य से सुनना, इस दृष्टि से सुनना कि भगवान सामने बैठकर हम आत्माओं को कुछ याद दिलाता है रोज, वो हमें याद आना चाहिए, रोज याद दिलाता है, बच्चे याद करो तुम देवता थे, याद आना चाहिए, ज्ञान मिल गया वो अलग चीज है, अब याद आना चाहिए, ये थे हम, ऐसे पवित्र, ऐसे महान, तेजस्वी। बच्चे ये 5000 साल का खेल पूरा हुआ, अब चलना है, मैं तुम्हें लेने आया हूं, याद आ जाए, पूरा हो रहा है, चलना है, घर की याद दिला दी, समझ रहे हैं ना? तो ये स्थिति को श्रेष्ठ बनाने का सवेरे का एक घंटा सबसे सुंदर आधार बन जाएगा। इसलिए जिनको मुरली से बहुत प्यार है, कई लोगों ने यह समझ लिया है मुरली 5 बार पढ़ लो, जिन्हें सुना दादी जानकी 22 बार पढ़ा करती थी, हम भी पढ़ें, उसकी जरूरत नहीं है, अब आपको एक ही बार सुनो बैठकर, याद दिला रहा है भगवान कुछ, उसे याद करो, बस याद आता जाएगा, धीरे धीरे याद आता जाएगा, हम स्मृति स्वरूप होते जाएंगे। यह दूसरा बल, स्वमान का बल, तीसरा पवित्रता और चौथा योग का बल। जिनको बहुत महान बनना है वो इन चारों बलों को बढ़ाते चले, समस्याएं आप नष्ट होती जाएंगी। देखो कैसे समस्याएं नष्ट होती हैं। आपने अपने घर में ऑल आउट लगा दिया, जानते हैं ना ऑल आउट, तो सब आजकल तो खूब लगाते हैं ना, मच्छरों को क्या होगा, क्यों भागते हैं मच्छर, नहीं बता। हाँ, उसकी सूक्ष्म स्मेल ऐसी फैलेगी कि मच्छरों से सहन नहीं होगी, कुछ तो चक्कर खा के गिर के मरेंगे, कुछ भाग जाएंगे। ऐसे ही यदि श्रेष्ठ स्थिति में रहा जाए, परिस्थितियां भी चक्कर खा के गिर जाएंगी। स्थिति श्रेष्ठ तो परिस्थितियां कुछ भी नहीं। बहुतों ने अब तक, जब से हमने समाधान शुरू किया था, बाबा के बच्चे तो करते ही हैं, लेकिन जो बच्चे नहीं हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, उन्होंने बहुत प्रैक्टिस की, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, और समस्याएं खत्म हो गई। अब उनकी भावना भी थी और उस चीज में विश्वास भी रख लिया। ये हजारों के अनुभव हैं, हजार लाखों तो नहीं, हजारों के अनुभव हो गए, जिसमें ये अभ्यास करने से वो मुक्त हो गए और बाबा के समीप आने लगे। फिर कोर्स किया, फिर ज्ञान लिया। तो हम अपने शक्तिशाली स्वरूप में रहें। हमारा स्वमान भी हमारी साधना है। मैं एक महान आत्मा हूं, आए इस फीलिंग में। अब इसका मैं एक दूसरा स्वरूप आपके सामने रखता हूं, जो आपको रोज करना है। और एक बहुत अच्छी बात, ऐसे तो मुझे इस चीज का बहुत पता ही था, और आप में से भी कईयों को पता होगा, कल शांतिवन में सवेरे जब योग चल रहा था तो मैं तो अपने कमरे में ही था, हमारे वहां स्पीकर है, मैं उसके पास जाके बैठ गया। अव्यक्त मुरली चालू कर दी उन्होंने योग में, 4:15 के आसपास लाइन आई, अमृत वेले को विशेष वरदान है, इसमें बाबा तुम सबको वरदान देता है, वरदानी वरदाता स्वरूप में बैठता है, तुम्हारे पास आता है, सावधानी से बैठो, ऐसा ना हो आकर चला जाए। बहुत ही अच्छी बात है। सवेरे अब हम बाबा की इंतजार करें कि हमारे पास कब आएगा, इससे अच्छा है बोलो हम ही उसके पास चले जाए ना, कि आ गए लो अब दे दो। बाबा ने कहा जो इच्छा हो वो लो सवेरे वरदान, अब ले सकते हैं, जहां जिस पर भी मेरी दृष्टि पड़े बाबा ऐसा वरदान दे दो, उसके विघ्न नष्ट हो जाए, जहां मैं जाऊं वहां का अंधकार दूर हो जाए, किसी के सिर पे मैं हाथ रख दूं उसके दुख समाप्त हो जाए। चाहेंगी माताएं ऐसा वरदान, अब लेना आपको है। तो क्या करेंगे हम सभी रोज एक बार, चाहे तो बाबा को नीचे आह्वान करें, चाहे हम बाबा के पास जाएं, दोनों अभ्यास किए जा सकते हैं। और फिर देखेंगे बाबा ने अपना हाथ मेरे सिर पर रख दिया, तिलक लगाया और याद दिलाया। अब जो वो याद दिलाए उसे हम ग्रहण कर लें, यही सत्य है। अगर वो कह रहा है तुम महान आत्मा हो, तो हमें रिजेक्ट करने की जरूरत नहीं कि मैं नहीं हूं, ये होता है बहुतों से। भगवान कह रहा है तुम महान आत्मा हो, और हमारे अंदर से आवाज आ रही है नहीं हो, तो किसकी आवाज पावरफुल होगी? बाबा की या हमारी? हम महान हैं, हम अपनी छोटी मोटी कमी को देख के सोच लेते हैं कि नहीं है, कमी तो कलयुग के अंत में सब में ही आ गई, उसमें क्या बात हुई। हम महान हैं इस फीलिंग में रहेंगे तो महान बन जाएंगे। रेड लाइट, चले अब हम बाबा के पास चल के ये अभ्यास करते हैं। चलने का और कोई तरीका नहीं, जैसे हम यहाँ बैठे हैं, फील करो हम ऊपर हैं, अपने को ऊपर देखो आकाश के पार। ये सूक्ष्म लोक चारों ओर सफेद प्रकाश, सामने ब्रह्मा बाबा बहुत तेजस्वी, उनके अंग अंग से प्रकाश की किरणें फैल रही हैं। संपूर्ण फरिश्ता, भाग्य विधाता, ईश्वरीय शक्तियों और अधिकारों से संपन्न, उनके मस्तक में चमक रहे हैं ज्ञान सूर्य। उनकी तेजस्वी किरणें चारों ओर फैल रही हैं। बाबा दृष्टि दे रहे हैं, बाबा ने तिलक लगाया, लगाएं तिलक, बाबा तिलक लगा रहे हैं। और वरदानी हाथ सिर पर रख दिया, वरदान दिया, बच्चे विजयी भव, विघ्न विनाशक भव, श्रेष्ठ योगी भव। दृष्टि दे रहे हैं, वरदानी हाथ सिर पर, और बोले बच्चे तुम साधारण नहीं हो, इस सृष्टि की महान आत्मा हो। अब स्वीकार करते चलेंगे, मैंने तुम्हें महान कार्यों के लिए चुना है, तुम इस धारा के चमकते सितारे हो, मैंने तुम्हें अपनी सारी शक्तियां दे दी हैं, तुम ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर मास्टर सर्वशक्तिवान हो। मैंने तुम्हें वरदान दे दिया है, तुम विघ्न विनाशक हो। जहां भी तुम्हारे कदम पड़ेंगे वहां सभी के विघ्न नष्ट हो जाएंगे। तुम विजयी रतन हो, कल्प कल्प तुमने इस माया को जीता है, तुम इस संसार में सबसे अधिक भाग्यवान हो। तुम वही हो जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है, तुम विश्व कल्याणकारी हो, तुम्हारा एक एक संकल्प जग का कल्याण करता है, तुम मास्टर ज्ञान सूर्य हो। तुम्हारी किरणों से माया के कीटाणु नष्ट हो रहे हैं। तुम इस संपूर्ण प्रकृति के मालिक हो। सभी धर्मों की आत्माओं के पूर्वज हो। पवित्रता की देवियां हो, फरिश्ते हो। दृष्टि दे रहे हैं और हम वापिस ये बहुत अच्छा अभ्यास है जो रोज एक बार कर लेना चाहिए। सवेरे करेंगे तो सवेरे का समय सुंदर बीतेगा, भूल जाएं तो 5-6 बजे कर लो शाम को। पसंद है, जगेंगी आपकी सोई हुई शक्तियां। हर एक आत्मा के अंदर बहुत कुछ है, वो जग जाएगा, दबा हुआ है। सिंपल अभ्यास है, कभी बाबा का आह्वान कर लो तो बाबा नीचे आ गए और यही काम नीचे हुआ। कभी ऊपर आनंद आएगा, कभी वो नीचे आएंगे तो आनंद आएगा। योग में सबको ये याद रखना है, एक ही अभ्यास सदा सुख नहीं देगा। ध्यान दें आप इस बात पे। इसलिए अभ्यासों को चेंज करते चलो, हफ्ता 10 दिन करो, फिर दूसरा ले लो, फिर भले ही वो अगेन लो, दूसरी बार लो, लेकिन चेंज करते रहो। समझ रही ना बहने, चेंज करते रहो। आज 200 मान लिए हैं, 3 दिन में ही वो फिर अच्छे नहीं लगेंगे, बोरियत होने लगेगी, दूसरे ले लो, फिर 2 दिन के बाद वो अच्छे लगेंगे। ये मन की स्थिति हो गई है कलयुग के अंत तक आते आते। इसके बारे में कुछ सोचना नहीं है कि हमारा योग तो बहुत अच्छा लगता था, पता नहीं हफ्ते के बाद क्या हो गया। ये गति सबको ख्याल रहे। कई लोग निराश होते हैं, हम तो बहुत अच्छा योग करते थे, 1 मास बहुत आनंद आया, पता नहीं वहां चला गया, कहीं नहीं गया। चेंज कर दो। क्लियर है ना बात। एक बहुत अच्छी साधना, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, सुना है ना सबने। देखो ऐसे करेंगे इसको, हम करेंगे इसको अभी नहीं, थोड़ा ठहर के। यहां मैं ब्राह्मण आत्मा, अपने एक साइड में अपना फरिश्ता रूप बनाओ, पिक्चर बनाओ, कुछ नहीं, जैसा यहां हूं ऐसा ही वहां हूं, मेरा ही स्वरूप और मेरा ही स्वरूप इधर देवता, 3 खड़े करो। आत्मा यहां से निकली यात्रा की, फरिश्ते में उसका चिंतन करो, वहां से निकली यात्रा की देव स्वरूप में उसका चिंतन, फिर वहां से निकली यात्रा कराएंगे, फट से नहीं, 5-7 सेकंड धीरे धीरे आ रही है, यहां आ गई। इसको हम करेंगे प्रैक्टिस। योगी वही बन सकते हैं जो सरल चित्त हो, सहज भाव से जीवन जीना है। सब भाई बहने सीख लें, सारे संसार को सीखना है, सहज भाव से जीवन जीना है। क्या है सहज भाव? ज्यादा हड़बड़ी नहीं। भोजन बनाना है, आनंद लो, ये नहीं जल्दी 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 काम उतारना है। घड़ी देख रहे हैं, घड़ियों ने बड़ा काम बिगाड़ा है, टाइम कॉन्शियस बना। घड़ी नहीं थी, मनुष्य मजे से काम करता था। अब से 50 साल पहले लोग सोचते होंगे, विज्ञान बढ़ता जा रहा है, हमें याद है जब कंप्यूटर आने लगा भारत में तो लोग कहने लगे एक कंप्यूटर 10 लोगों का काम करेगा, लोग बेकार हो जाएंगे, लाइफ इजी हो जाएगी। पर इजी नहीं हुई, भागदौड़ बढ़ा दी कंप्यूटर ने, और जिस दिन फेल हो गए संसार रुक जाएगा। संसार रुक जाएगा। और जिस दिन मोबाइल डब्बे रह गए उस दिन क्या होगा, मोबाइल डब्बे रह जाएंगे, तोल के भाव भी क्या करेंगे, 100 रुपए में 10 किलो क्या रह जाएंगे मोबाइल। युवक तो उदास हो जाएंगे, अब जीवन क्या रह गया, जीवन ही नहीं रहा। और जब मोबाइल नहीं थे जीवन बहुत सुखी था। सहज भाव से जीना है, सबको तैयार करना है अब अपने को, जो कुछ होगा उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। सहज भाव से जीने की पहली धारणा है स्वीकार करना, उन चीजों को स्वीकार कर लो जिन पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। अपने पिछले समय को भी पास्ट कहते हैं अंग्रेजी में, पास्ट के समय में यदि आपके साथ कुछ बुरा हो गया है उसके दबाव को उतार दो, इधर से हो गया, अब भगवान मिल गए ना। कईयों के साथ ऐसा हुआ, बहुत बुरा हुआ है, सताया है बहुतों ने, जिसके पास गए उसने ही सताया है, मृत्यु हो गई, बच्चों की मृत्यु हो गई, कष्ट देखे, फिर बाबा के पास आ गए। मुझे जब कहानी सुनाते हैं मैं पूछता हूं, अगर ये कष्ट न होते तुम आते बाबा के पास, देखते भी नहीं थे, तो भगवान की प्लानिंग थी, चिंता ना करो, अब वो मिल गया, सुखी हो जाओ, भूल जाओ जो कुछ अब तक हुआ है किसी के भी साथ। कई माताओं के चेहरों पर पास्ट का दबाव अभी भी है, माताएं ज्यादा रखती हैं, भाई थोड़ा कम, इसलिए माताओं को घुटने दर्द बहुत होते हैं। किस किस को है घुटने दर्द, हाथ उठाएंगे, ईमानदार से उठा दो। अच्छा, भाइयों में किस किस को, थोड़े ही हैं, भाई 5 और बहने 50, 10 गुना ज्यादा हैं। जो जितना प्रेशर इधर रखते हैं वो प्रेशर घुटनों के दर्द को बढ़ाता है, याद रखेंगे। इसलिए इस प्रेशर को हटाओ, जो कुछ भी जीवन में हुआ हो गया, बच्चे ने सताया है ना बहुत, कल्याण हो, अब भगवान मिल गया, बिजनेस में घाटा हो गया ना बहुत सारा, बड़े कष्ट हुए पूरा हुआ, भगवान मिल गए, सब कुछ खोकर भी यदि प्रभु मिलन हो गया तो सस्ता है। चंडीगढ़ के एक परिवार ने मुझे लेटर लिखा लंबा चौड़ा। 2.5 साल पहले तक हम बहुत साहूकार थे, फैक्ट्री थी, सब नष्ट हो गया, और हमारा फिर 2 साल बहुत बुरा बीता, बाबा के पास आए, अब सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जब सुनते हैं ये ड्रामा रिपीट होता है तो फिर होगा, दुखी हो जाते हैं, क्या करें। फोन नंबर लिखा था, मैंने फोन किया, ठीक है आपके साथ बुरा तो हुआ, पर ये बताओ अगर ये बुरे दिन ना आते तो भगवान से मिलन होता आपका, का नहीं होता। तो मैंने कहा अगर चाहते हो अगले कल्प में वे बुरे दिन ना आए, अच्छी बात है, तो ये अच्छे दिन भी नहीं आएंगे। बोलो एक छोड़ना पड़ेगा, या तो भगवान का मिलन छोड़ो या उसे, का नहीं बाबा तो चाहिए, तो उसे स्वीकार कर लो, भूखे तो नहीं रहे। जो कुछ भी होता है वो अब बाबा के पास लाने के लिए भी हो रहा है बहुतों को, अब बाबा के पास लोग समस्याएं, दुख, अशांति, परेशानियां लेकर आ रहे हैं, कहीं तरीका नहीं मिला समाधान, चलो ब्रह्मा कुमारियों के पास शायद मिल जाए, आ रहे हैं। तो उतार दो चादर अपनी सब, कौन सी चादर, ओढ़ी हुई है ना सिर पे, दिमाग के अंदर भर ली है, बदला जब तक नहीं ले लेंगे चैन से नहीं सोएंगे, भरा हुआ है सूक्ष्म, सबके अंदर भर गया, चेंज कर दो, हल्के हो जाओ, सब कुछ अच्छा हो गया। कितने भी कष्ट हुए हों, 5000 साल की यात्रा के अंत में भगवान का साथ मिल गया, कष्ट पूरे हुए, कांटों पे भी चलना पड़ा है ना, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, आ गए वहीं जहां की तलाश थी, मंजिल यही थी, चिंतन करो, उतारो सब, हल्के हो जाओ। हो गई हल्की माताएं तो घुटने दर्द भी हल्के हो जाएंगे आज से ही, पक्का समझ लो। हल्का कर दो अपने को। दूसरी चीज, कामनाएं नहीं, एक्सपेक्टेशंस, कामनाएं। कामनाएं कहते हैं दूसरों से हम बहुत कुछ चाहते हैं, ये ऐसा करे, ये ऐसा करे। एक अच्छी कहानी सुना देता हूं, सच्ची। एक बहन ने फोन किया, मैं बहुत परेशान हूं। किससे? पति से। क्यों? मेरी सुनता नहीं है। मैंने पूछा क्या करता है? प्रोफेसर है। तुम कितनी पढ़ी लिखी हो? मैं तो भाई पढ़ी नहीं हूं। समझ गए भाई लोग? अब बिना पढ़ी लिखी माता प्रोफेसर पर राज करना चाहती है, और वो राज करने नहीं देता तो ये दुखी है, चलेगा काम? मैंने उसे कहा, माताजी उसने पीएचडी की है, प्रोफेसर है, बुद्धिमान तो होगा ना? थोड़ा भी है तो बुद्धिमान, पर मेरी सुनता नहीं। भाई हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं। हल्का करो अपने को, सुनना तो चाहिए थोड़ा बहुत, पर इतना नहीं दुखी कर दोगे। वो जो मैं कहूं वही करे, मैं कहूं उठो तो उठ जाए, बैठो तो बैठो, ये नहीं। इतना दबाव उचित नहीं। अपने पर राज करेंगे तो विश्व पर राज करेंगे, और पति पे राज करेंगे तो अशांति होगी। हर आत्मा की नेचर स्वतंत्र रहना है, उसको सदा दबाया नहीं जा सकता। ठीक है या नहीं? तो कामनाएं कम कर दो, स्वीकार करके चलो, हल्का करो अपने को। और इसमें सुंदर बात है, अपने हर कर्म को आनंद पूर्वक करो। आपको बाइक भी चलानी है ना, एंजॉय करो उसको। भोजन बनाना है, एंजॉय कर, समझते हैं ना? एंजॉय, खाना खाते हैं आनंद लो, पानी पी रहे हैं डक 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 फटाफट नहीं, आनंद लो। पानी पीने के लिए आजकल बहुत आ रहा है, घूंट घूंट पियो, एक मिनट में पियो एक गिलास को, फटाफट नहीं, अनेक तकलीफें ठीक हो जाएंगी। एक बहन को अब डॉक्टरों ने बताया था सवेरे उठ के 3-4 गिलास पानी पी लो, अब वो बेचारी फटाफट पीने लगी, पेट फूलने लगा। फिर किस कहीं से उसे पता चला कि 3-4 गिलास तो पियो भी नहीं, 2 ही पियो, धीरे धीरे उसी दिन से ठीक हो गया। इसलिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो लोग सिखा तो देते हैं पर राइट ढंग से नहीं सिखाते। एक ने हमारे यहां सिखा दिया, उठते ही 8 गिलास पानी पियो। मैंने उससे पूछा, आपका नेचर क्योर है ना, इंग्लिश में नाम है नेचर क्योर, तो जो नेचुरल नहीं है, 8 गिलास उठते ही पानी पीना नेचुरल है? पिएगा कोई? जबरदस्ती आप पी रहे हो तो क्या ये सिस्टम पे दबाव डालना नहीं है? कहा नहीं, पर ठीक होगा। 2 दिन लोगों ने पिया, कि ने 3 दिन पिया, 4th दिन से 1 गिलास पर आ गए। मैंने कहा हमारी बातें बहुत प्रैक्टिकल होनी चाहिए, नहीं तो आपकी मेडिकल साइंस बदनाम होती है। जो चीज प्रैक्टिकल नहीं है, नेचुरल नहीं है, वो तो नेचर की ओर हुआ ही नहीं। सीधी सी बात, प्यास लगे पानी पियो, प्यास नहीं लगी और उड़ेल रहे गिलास, नुकसान होगा। हल्के फिर वहीं आ जाएं, योगी वही बन सकते हैं जो सरल चित्त हों, योगी वही बन सकते हैं जो पॉजिटिव हों। पॉजिटिव सोचना, अच्छा सोचना, हर घटना में एक अच्छाई भी है, एक अच्छा पहलू भी है, जिसको बाबा कहते थे हरे कल्याण के पर्दे के पीछे कल्याण भी छुपा हुआ है, उसे देखो, पर्दा हटेगा कल्याण दिखाई देगा। बाबा ने इतनी अच्छी मुरलियां चलाई हैं, आप उनकी स्टडी करो, अव्यक्त मुरलियों की। 2-3 साल से तो चली नहीं रही, उसे पहले की अव्यक्त मूल्यों की स्टडी करो, ज्ञान का भंडार दिखाई देगा। सारे संसार के मनोवैज्ञानिक मिलकर भी जो नहीं जानते, बाबा ने एक एक लाइन में रहस्य खोले हुए हैं। गुह्यतम ज्ञान है, चित्त को एकाग्र करेगा, मन को हल्का करेगा, दबाव को खत्म करेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, यही बाबा सिखा रहे हैं हमें। देखो मैं एक बात आपको याद दिला दूं उन लोगों की, कई लोग बहुत परेशान होते हैं हमारी सत्य बात सुनी नहीं जाती। मैं तो कहा करता हूं कि सम्राट अशोक ने नारा लगाया था सत्यमेव जयते, पर कलयुग में ये नारा नहीं है, असत्यमेव जयते है या नहीं। अब कलयुग के अंत में कोई सोचे कि सब कुछ सत्य हो, परेशानी होंगे सोचने वाले, इसलिए इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा ना, पॉजिटिव हो जाए। तो बाबा की एक सुंदर मुरली चली सत्यता की शक्ति पर, दो मुरलियां हैं वो, उसमें बहुत अच्छी लाइन थी। कई लोग सत्यता की इस बात से परेशान होते हैं ना, तो कहा असत्य के काले बादल हटेंगे, सत्य का सूर्य चमकेगा। बहुत अच्छी लाइन थी, सत्य के सूर्य को असत्य के काले बादल छुपा नहीं सकते, बादल हटेंगे। सत्य में शक्ति है, और जोड़ा जिधर सत्य है उधर बाप है। अब बात बहुत गहरी है, पर मनुष्य को थोड़ी इंतजार करनी पड़ती है ना। सत्य के साथ बाबा है, दिखाई तो ये देता है ना, सत्य के साथ सब कुछ है, दुनिया ही झूठ के साथ है। सत्य अकेला है, सत्य का मार्ग कटीला है, सत्य का पथ बहुत भारी है, लेकिन साथ भगवान है। अगर इस विश्वास के साथ चलेंगे तो सत्य प्रकट होगा। कुछ चीजें जो लिख रहे हैं लिख लें, मैं आपको लिखाना चाहता हूं, यूज करेंगे जीवन में, ताकि मन शांत रहे और बुद्धि स्थिर रहे, योग की साधना सफल हो। समस्या आने पर कई बच्चे इतने उलझ जाते हैं, समस्या आने पर कई बच्चे इतने उलझ जाते हैं जो ये भी भूल जाते हैं कि हमारा साथी कौन है। बहुत ही सुंदर बात है। सरल, इसलिए अपने जीवन में सभी ये फीलिंग बढ़ाते चलें। नशा भी है ये, बाबा हजार भुजाओं सहित मेरे साथ है। इसमें बैठने की जरूरत भी नहीं, इसमें ये भी नहीं हमारा मन भटकता है। संकल्प रोज 5-7 बार कर जाओ, ताकि ये पक्का हो जाए। क्या संकल्प करेंगे, आप देखेंगे कि समस्याएं सुलझने लगी। बस इस लाइन को पक्का करेंगे कि हम इतने न उलझ जाएं कि ये भूल जाएं। भुलाती है ना बातें, समस्या आती है कि भारी है कि मनुष्य सब भूलते, हम भी भूलते हैं। इसलिए मैंने इसकी बहुत प्रैक्टिस की पिछले कुछ सालों में, जब से सुना था ये महावाक्य मुझे भा गया। कितनी सुंदर बात कही, बाबा साथ है, नशे में आ जाए हजार भुजाओं सहित साथ है, उसके साथ होते हुए हमारा अहित होगा ही नहीं, उसका साथ मिलने के बाद और किसी के साथ की जरूरत नहीं, संसार एक तरफ हो जाए, हमारे साथ बाबा है, विजय हमारी ही होगी, ऐसा नशा हो जाए। ठीक बात है। हमारी साधनाओं में 5 स्वरूपों का अभ्यास भी बहुत सुंदर साधना है। 5 स्वरूपों का अभ्यास, कौन से हैं 5 स्वरूप? पहला अनादि, मैं आत्मा हूं, आत्मा के निराकार स्वरूप को देखना। मैंने आपको एक बात कही है, उससे आपको इजी हो जाएगा। ये बाबा की एक मुरली है, उसमें बाबा ने ऐसे ही बोला, अपने हर स्वरूप को सामने लाओ, मैं आत्मा हूं सामने। दूसरा आदि स्वरूप, देव स्वरूप सामने देखो, ये मेरा देव स्वरूप। तीसरा इधर की माताएं बोले हैं, तीसरा इनको नहीं पता, पूज्य स्वरूप, इमर्ज करो अपना, संतोषी मां बनना पसंद है या ज्वाला देवी या वैष्णो देवी, वहां तो केवल आत्माओं की पूजा है। मुझे भी जाना हुआ इस बार, मैं सोचता था क्या है, बड़ा लोग कहते हैं, देख के आए, घूमने गए थे उधर भट्टी थी कहीं, कहा चलो पास ही था, बहुत अच्छा हमें दिखाया वो जो मुख्य पुजारी था, उसको पत्र दे दिया था किसी ने, बेचारे ने आगे जाके ही हमें देखा, तीन आत्माओं की पूजा है, वो बनाई हुई पत्थर की, हाँ पिंडी बनाई हुई, सब दिखाया बताया हमने, देखा देखो ये एक ऐसा मंदिर है कि वैष्णव देवी नाम और देवी कोई नहीं, आत्माओं की पूजा। क्या अर्थ हुआ इसका? कि वो देवी जो आत्मा हो गई उसकी पूजा है। देवान पूरी तरह गल गए, आत्मा हो गई। तो वाइब्रेशंस भी बहुत अच्छे थे, हमें बहुत अच्छा लगा वहां जाके, वाइब्रेशंस बहुत अच्छे थे। तो ब्राह्मण और लास्ट फरिश्ता, ये पांचों स्वरूप आप अभ्यास करो सोने से पहले और उठते ही, और भूल जाए तो कभी भी, बहुत अच्छा होगा। सवेरे के समय पर सभी बहुत ध्यान दें, माताओं को तो सवेरे उठने की आदत होती है, भाई भी जिनको नहीं है आदत बनाए, टाइम पे सोना, थोड़ा कम खाना। जिनकी आयु 60 साल के बाहर हो गई है, हेल्दी लाइफ के लिए भी वो रात को आधा भोजन ही करें, डॉक्टरों के पास चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ये ना सोचना आधा खाएंगे तो शरीर कमजोर हो जाएगा, ये मान्यता ही गलत है कि ज्यादा खाएंगे तो ताकत रहेगी, ज्यादा खाएंगे तो कमजोर होंगे। क्यों? ज्यादा खा लिया उसको पचाने के लिए शरीर को अपनी ताकत लगानी पड़ेगी, वीक होंगे। मुझे ये बात एक अच्छे डॉक्टर ने सिखाई थी, चार रोटी खानी है, तीन खाओगे ताकत बहुत मिलेगी, हजमा हुआ एनर्जी मिली, पांच खा ली तो इसको हजम करने के लिए शरीर को अपनी शक्ति लगानी पड़ेगी, आप वीक होंगे। एक बहुत अच्छा डॉक्टर मुझे मिला, मैंने पूछा, बीके बाबा का बच्चा 72 इयर्स का, 72 साल, मैंने पूछा बड़े हेल्दी लग रहे, चेहरा चमक रहा था, कहा मैं जब से 65 साल का हुआ मैंने एक टाइम भोजन कर दिया, दिन में दो टाइम फ्रूट दूध जो भी अच्छा लगे खाया, मैं बिल्कुल स्वस्थ, कोई बीमारी नहीं। ये रहस्य सभी को जान लेनी चाहिए, जो चीज हमें हजम नहीं हो रही रात को भारी करती है उसे छोड़ दो। अब दूध पीते हैं आपकी तरफ भी बहुत, लेकिन अगर आपको भारी लगता है तो छोड़ देना चाहिए, दिन में पीना चाहिए। कई डॉक्टर भी कहते हैं रात को दूध पियो, पर सबके लिए नहीं, मेडिकल का कोई भी सिद्धांत सबके लिए नहीं होता एक सा, हमें अपने सिद्धांत खुद बनाने चाहिए। कोई कुछ बताएगा कोई कुछ, आप कंफ्यूज होंगे क्या करें क्या ना करें, खुद अपने डॉक्टर बन जाओ। माताएं तो वैसे ही डॉक्टर होती हैं घरों में, पहले माताएं तो होती थी वैद्य घर के, तो अब बहुत सारे डॉक्टर पैदा हुए। और जब तक माताओं ने चक्की चलाई सवेरे, किस किसने चलाई यहां, देखो माताएं चक्की वाली हैं, डॉक्टरों के चक्कर नहीं लगाने पड़े होंगे तब तक, और जब से चक्कियां छूटी चक्कर शुरू। तो सभी सवेरे के समय को महत्व देकर टाइम पे सोना, क्योंकि सवेरे योग तो सारा दिन लगाया जा सकता है, पर सवेरे का आनंद और बाबा से विशेष प्राप्तियां अलग हैं। सवेरे के समय का यही महत्व है कि उस टाइम बाबा अपनी ओर से हमें बहुत कुछ देता है और सारा दिन हमें लेना पड़ता है, ये अंतर हो गया। इसलिए सवेरे के समय को न केवल योग में लेकिन सुंदर चिंतन के साथ व्यतीत करेंगे। इस बात को आप अच्छी तरह ग्रहण कर लें, सुंदर चिंतन, चिंतन ही हमारी स्थिति का निर्माता है। चिंतन जितना महान, योग उतना ही सरल, स्थिति उतनी ही श्रेष्ठ। चिंतन सवेरे उठते ही, मैं ये चीज सबको सिखाता हूं, आप में से कई करते होंगे, कल से अन्यथा शुरू कर दें। सवेरे उठते ही पहला संकल्प, बाबा को गुड मॉर्निंग, आदत बन जाए, जब भी उठे 2 बजे भी आंख खुल गई गुड मॉर्निंग करेंगे और एक सुंदर संकल्प करेंगे, बाबा आपने मुझे सब कुछ दिया, आपको बारंबार शुक्रिया। आदत बनाओ इसे भी। तीसरा संकल्प करेंगे, मैं बहुत भाग्यवान हूं, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। सवेरे करो संकल्प, पक्के कर देना है संकल्प, क्योंकि आंख खुलते ही जो संकल्प हम करेंगे वही हमारा जीवन होगा। बड़ी गुह्य फिलोसफी है ये। सवेरे हमारा अंतर मन जगा होता है, सुंदर संकल्प, मैं बहुत सुखी हूं। बाबा को कहो, बाबा आपको पाकर मैं बहुत सुखी हो गई, आपको कोटि कोटि बार शुक्रिया। और उठते ही किसी ने कह दिया उल्टा, क्या बहुत दुखी हूं, पति भी सोया हुआ, इसने तो तंग कर दिया, बाबा इसको ले जाओ, तो आपका समझ लो दुख बढ़ गया, बहुत बढ़ जाएगा। जो संकल्प सवेरे करेंगे उसमें वृद्धि होगी, अच्छी तरह जान लो। कई लोग गलती करते हैं, आंख खुली 3 बजे आंख खुली, पहले तो घड़ी देखेंगे 3 बजे सो जाएं, और कई तो 4 बजने में 5 मिनट की भी कमी है तो भी सोचेंगे 5 मिनट और सो लूं, फिर सीधा 5 बजते हैं। और कई आधी नींद में ही सोचते हैं योग तो लगेगा नहीं, क्या फायदा उठ के सो जाऊं। अब आंख खुली रही थी, अंतर मन जगा है, और हमने सोच लिया योग तो लगता नहीं, तो क्या होगा, लगेगा ही नहीं। आंख खुली आधी नींद में मैं श्रेष्ठ योगी हूं, देखो क्या होता है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। बोलना नहीं, रोज उठते ही मेरा जीवन निर्विघ्न है, मेरा परिवार निर्विघ्न है, मेरा काम धंधा विघ्नों से मुक्त है। माताएं सीख लें अच्छी तरह, उठते ही नहीं बाबा बहुत समस्याएं हैं मदद करो, बाबा कहेगा समस्याएं तुमने पैदा की मदद मैं करूं, बाबा से नहीं, मेरा जीवन समस्याओं से मुक्त है, बाबा आपने मुझे सब कुछ दिया, आपको बारंबार जितनी शुक्रिया करेंगे बढ़ता चलेगा, मैं बहुत धनवान हूं। हाँ, या गरीब माताएं जो जो बैठी हाथ उठाओ, गरीब माताएं हाथ उठाओ, देखो गरीब माताएं कितनी आई हैं, नहीं निकाल दो इसको यहां से, मैं बहुत धनवान हूं। बोलो गरीब माताएं, मैं अब गरीबी में हाथ न उठाना, कहीं सवेरे उठते ही सोच लो मैं बहुत गरीब हूं बाबा ऊपर से गिरा दो पैसे, तो तथास्तु का वरदान मिल जाएगा, आप गरीब ही रहेंगे, मेरे जैसा धनवान। अरे हमने बहुत धनवान देखे जिनको नींद नहीं आती, आप तो घोड़े बेच के सोते होंगे, सोते हैं ना, जिसके पास खुशी है, जिसके पास शांति है, जिनके परिवारों में प्रेम है, उन जैसा भाग्यवान तो कोई नहीं, असली धनवान वो हैं। इसलिए अपने अंतर मन से हटा दो मैं गरीब हूं, फिर से हाथ उठाना गरीब माताएं, 2 अभी भी हैं। नहीं, तो आप सभी बहुत अच्छी साधनाएं करें जीवन में, परीक्षाओं के समय से हम गुजर रहे हैं, सूक्ष्म परीक्षा हो रही है निश्चय की, मोह की परीक्षा होगी, और ऐसा काल आ रहा है जिसको हम देख नहीं पाएंगे, इसलिए हमें अभी से तैयार करना है अपने को और साक्षी भाव धारण करना है, इस संकल्प के साथ जो कुछ हो रहा है वही सत्य है। अब वो नहीं होगा जो हम चाहेंगे, अब वो होगा जो प्रभु प्लान है। ड्रामा छोड़ो, प्रभु प्लानिंग है युग को बदलने की, ये गंदगी समाप्त करने की प्रभु प्लानिंग है। अब सबको जाना है ऊपर। जब बाबा कहता है, हम रोज सुन लेते हैं ना बच्चे, ये दुनिया कब्रस्तान होनी है। आज भी था, मैं सोच रहा था कि सबने सुन लिया और किसी को इधर गया नहीं, कब्रस्तान क्या होता है। सारी दुनिया कब्रस्तान हो जाएगी। तो अब हम अभ्यास करेंगे और मैं आपके पास से छुट्टी लूंगा, आधा घंटा योग चलेगा। ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, चित्र बनाए अपने एक और अपना फरिश्ता स्वरूप, सब अपनी लेफ्ट साइड में, बाई ओर अपना फरिश्ता स्वरूप देखे, बिल्कुल ऐसा ही शरीर जैसा ही मेरा शरीर है सामने खड़ा है, और अपने दाई तरफ अपना देव स्वरूप। अब आ जाए इस ब्राह्मण शरीर में, मस्तक के मध्य में मैं चमकती आत्मा, अब इस देह को छोड़कर मैं आत्मा निकलकर चली, यात्रा पर चली। आत्मा को जाते हुए देखें, जा रही है थोड़ी दूरी पर मेरा फरिश्ता स्वरूप, मस्तक में जाकर बैठ गई। देखो लाइट का शरीर सफेद और आत्मा मस्तक में गोल्डन रूप में चमक रही है। मैं फरिश्ता हूं, डबल लाइट फरिश्ता, बंधन मुक्त फरिश्ता, पवित्रता का फरिश्ता। अब यहां से आत्मा निकली, फिर यात्रा पर चली अपने देव स्वरूप की ओर। देव स्वरूप मस्तक में बैठ गई। मैं देवता, ये मेरा स्वरूप, सिर पर डबल ताज, यहां मैं सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण पवित्र, कंचन काया। यहां से आत्मा फिर निकली और यात्रा पर बैठ गई भ्रकुटी की कुटिया में। मैं महान आत्मा इस देह में अवतरित आत्मा, परम पवित्र आत्मा, शक्तियों से भरपूर आत्मा। फिर इस देह से निकली यात्रा पर, आत्मा जा रही है अपने फरिश्ते स्वरूप की ओर। बैठ गई भ्रकुटी की कुटिया में, यहां मैं फरिश्ता हूं, बहुत तेजस्वी, परमात्म शक्तियों से भरपूर, बहुत हल्का, संसार में कहीं भी विचरण करने में समर्थ। यहां से फिर मैं आत्मा निकली, अपने देव स्वरूप की ओर चली, निराकार आत्मा यात्रा पर। देव स्वरूप में बहुत तेजस्वी, अंग अंग से जैसे कि प्रकाश फैल रहा है, संपूर्ण पावर प्रकृति की भी मालिक। यहां से निकलकर फिर यात्रा पर, भ्रकुटी सिंहासन पर। ओम शांति। ये डील आप करेंगे। थैंक यू वेरी मच।
आदरणीय सूरज भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। आपको फिर से एक बार बहुत बहुत थैंक्स।